पृष्ठ संख्या 94, बॉक्सर आंदोलन के बाद की स्थिति। बॉक्सर आंदोलनकारियों के पेचिंग से पीछे हट जाने के बाद सितंबर 1901 के बॉक्सर समझौते बॉक्सर प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी शक्तियों ने पेचिंग से अपनी सेनाओं को हटाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में रूस को भी प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर पीछे हटना पड़ा, परंतु उसकी गति इतनी धीमी थी कि तीन प्रमुख मुक्त द्वार अर्थात ओपन डोर शक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन और जापान को यह विश्वास होने लगा कि रूस बॉक्सर समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं था। न्यू चुआंग संधि बंदरगाह को वे विशेष रूप से रूसी प्रभाव से मुक्त रखना चाहते थे, क्योंकि तीनों के लिए इस बंदरगाह के मुक्त रूप को बनाए रखना जरूरी था। जापानी व्यापारियों के लिए यह बंदरगाह सामान भेजने का मुख्य द्वार था। यदि रूस इस बंदरगाह पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता तो अनेक अवरोध पैदा हो सकते थे, और जापान ऐसा नहीं चाहता था। पश्चिमी देशों के लिए अप्रैल 1901 से शंघाईकुआन न्यू चुआंग रेलवे के यात्रियों के लिए उपयोग लाने की स्थिति में इस बंदरगाह को स्वतंत्र रखना और भी जरूरी हो गया। इस केंद्र बिंदु से होकर ट्रांस साइबेरियन तथा पूर्वी चीनी रेलवे पेचिंग और यूरोप के बीच चलती थी। चूंकि रूस इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तीनों शक्तियों के सदस्य न्यू चुआंग गए। उनका उद्देश्य इस संदेश को पहुंचाना था कि तीन पूर्वी प्रांतों पर उनके अस्थायी अधिकार का विरोध हो सकता था। रूस ने यह घोषणा की कि जब तक रूसी चीनी समझौता रहेगा तब तक रूसी अधिकार बना रहेगा। चूंकि वापस हटने के लिए रूस चीन से बैंकिंग संबंधी समझौता चाहता था और चीन इसके लिए तैयार नहीं था, रूस के वापस हटने की दिशा की ओर कोई भी कदम नहीं उठाया जा सका। जहां तक 1902 में रूसी जापानी संबंधों का प्रश्न है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में ईतो की गैर सरकारी यात्रा के दौरान उसके नर्म व्यवहार से प्रोत्साहित होकर रूस ने एक संधि प्रस्ताव पेश किया। इसमें तीन मांगों को सम्मिलित किया गया था। प्रथम, कोरिया की स्वतंत्रता पर आपसी गारंटी। द्वितीय, कोरियाई भूमि को सैनिक या रणनीति के लिए प्रयोग न करने का आश्वासन। तथा तृतीय, कोरिया जल्ड मरुमध्य से स्वतंत्र रूप से आवागमन। उधर जापान आंगल जापानी संधि कर चुका था, जिसके अंतर्गत कोरिया और चीन की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को स्वीकार किया गया था। इस संधि में अप्रत्यक्ष रूप से एशिया में किसी तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप करने की स्थिति में सुरक्षा का आश्वासन भी सम्मिलित था। इस संधि से प्रोत्साहित होकर जापान ने कोरिया के प्रश्न पर अब कठोर दृष्टिकोण अपनाया। राजनीतिक स्तर पर उसने कोरियाई दरबार में अपने सलाहकारों और राजनीतिक समर्थकों के गुट को बढ़ावा देने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप, यद्यपि उपयुक्त प्रवासी जापानी प्राप्त करना कठिन था, फिर भी 1903 में दक्षिण पूर्व कोरिया में जाकर बसने वाले प्रवासी जापानियों की संख्या 30,000 हो गई। विदेशों में प्रयोग करने के लिए जापानी धन की कमी न होने के बावजूद जापान ने खदानों, डाकघरों और बेतार साधनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जापान का दाइची बैंक केंद्रीय बैंक की तुलना में वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा तथा वह मुद्रा जारी करने लगा और कोरिया दरबार को ऋण भी देने लगा। 1898 में प्राप्त पट्टे के अंतर्गत फुसान और सियोल के बीच रेलवे निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए अनेक कदम उठाए गए, परंतु इस कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया। यदि कोरिया प्रायद्वीप को जापानी व्यापार के लिए खोलना था तो इस रेलवे का बनना अत्यंत आवश्यक था। इस उद्देश्य से 1902 में लंदन में विदेशी ऋण जुटाया गया। 1903 में जापानी मंत्रिमंडल द्वारा कोरिया में निर्धारित परियोजनाओं हेतु 20 लाख येन जारी किए गए। इसमें सियोल फुसान रेलवे निर्माण को प्राथमिकता दी जानी थी। इस तरह कोरिया में जापानी उद्यम तीव्र हो गए और उन्हें अस्थायी बनाने के लिए जापानी सरकार भी गतिशील हो गई। इस प्रकार की गतिविधियां रूस की स्थापित स्थिति के विरोध में और जापान में उत्पन्न रूस विरोधी भावना का परिणाम थी। कोरिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से जापान ने कोरिया के संदर्भ में रूस द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी का विरोध किया। यह मांग अमेरिका द्वारा भी रखी गई थी। इससे स्पष्ट हो रहा था कि जापान कठोर दृष्टिकोण अपना रहा था और कोरिया प्रायद्वीप वह केवल अपने लिए ही चाहता था। इस संदर्भ में वह उस किसी भी समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था जो कोरिया में उसकी मजबूत स्थिति को ठेस पहुंचाता। इस तरह जापान के कठोर दृष्टिकोण, आंगल जापानी समझौते के मूल्यांकन, मुक्त द्वार की नीति अपनाने वाली शक्तियों के हस्तक्षेप का भय और चीन द्वारा लगातार रूस की मांगों को अस्वीकार करने का सामूहिक परिणाम अप्रैल 1902 में रूसी प्रस्ताव के रूप में सामने आया। इसके आधार पर रूस और चीन के बीच संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत रूस मंचूरिया से अगले 6-6 महीने के 3 चरणों में पीछे हटने को तैयार हो गया। पहले 6 महीनों में शनयांग प्रांत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से जो लियाओह नदी तक था रूस द्वारा खाली किया जाना था। इसमें निर्मित रेलवे चीन को सौंपी जानी थी। आगामी 6 महीनों में शनयांग और चिलिन प्रदेशों को रूस द्वारा खाली किया जाना था और वहां से शाही सेनाएं पीछे हटाई जानी थी। अंतिम 6 महीनों में रूसियों द्वारा लेहुंग चियांग प्रदेश को छोड़ा जाना था। इस समझौते को जापान और ब्रिटेन ने मुक्त द्वार नीति की सफलता के रूप में सराहा, परंतु यह समझौता केवल बाहरी रूप से ही महान प्रतीत हो रहा था। रूस इसे स्वीकार करने और लागू करने की इच्छा नहीं रखता था। चूंकि रूस इसका पालन न करने का कोई न कोई बहाना पेश करने की सामर्थ्य रखता था। ऐसी स्थिति में इस समझौते की समाप्ति को भी नहीं सिद्ध किया जा सकता था। प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण बहाना बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा हुआ था। चूंकि इस समझौते में अशांति की स्थिति का न होना बहुत जरूरी था, इस कारण इस प्रदेश में घटने वाली डकैतियों के आधार पर रूस यह बहाना बना सकता था कि वह संधि को कार्यान्वित करने में असमर्थ है। इसी तरह सेंट पीटर्सबर्ग और मंचूरिया के बीच आवागमन की समस्या भी एक अवरोधक कारक थी। चूंकि इस संधि का कार्यान्वयन सेंट पीटर्सबर्ग पर निर्भर न होकर सेना और मंचूरिया में रेलवे अधिकारियों पर निर्भर था, इसलिए इच्छा होने की स्थिति में भी इन सभी को एकजुट करना कठिन था। परिणाम स्वरूप यद्यपि अक्टूबर 1902 में लियाओह नदी के पश्चिम तक की जमीन प्रथम चरण में रिक्त कर दी गई, रूसी अधिकारियों और जार ने यह निश्चय किया कि भविष्य में मंचूरिया पर रूसी नियंत्रण स्थापित हो जाए ताकि वह रूस पर आश्रित हो जाए। इस तरह मंचूरिया का संचालन करने वाले रूसी अधिकारियों ने यह फैसला किया कि दूसरे चरण को तुरंत कार्यान्वित करना कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। यह कार्य निम्नलिखित शर्तों पर टिका हुआ था। पहला, रिक्त किए गए प्रदेशों में कोई भी स्वतंत्र बंदरगाह या दूसरी शक्तियों का दूतावास नहीं खुलेगा। दूसरा, उत्तर में रूसी नागरिकों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी। तीसरा, रूसी अधिकार के दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहीं बनी रहेगी। चौथा, न्यू चू आंग से प्राप्त किया गया कर केवल रूसी चीनी बैंक में जमा किया जाएगा। पांचवा, न्यू चुआंग में सफाई संबंधी कार्य अधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। छठा, अपने बेतार के लिए रूस मंचूरिया में चीनी बेतार के लिए लगाए गए खंभों का प्रयोग करना। सातवां, तीन पूर्वी प्रांतों का कोई भी हिस्सा किसी विदेशी शक्ति को नहीं दिया जाएगा। रूस के इस अचानक बदलाव ने चीन और जापान दोनों को ही विस्मित कर दिया। यह स्थिति और भी अस्पष्ट हो गई जब रूस ने कोरिया में घुसपैठ और जरूरत पड़ने पर इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने सैनिक और नौसैनिक शक्ति में भी इजाफा कर लिया। कोरिया में रूस की बढ़ती हुई दिलचस्पी तब स्पष्ट हुई जब उसने सियोल से उईजी तक रेलवे निर्माण के अधिकार जोंगगाम्पो में टिम्बर कंपनी स्थापित करने और यालू नदी के मुहाने पर अल्पकालीन पट्टे की मांग की। जापान ने इसका विरोध किया क्योंकि व्यापार की अपेक्षा यह रणनीति के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण था। उसके अनुसार रूस उत्तरी कोरिया में अपने स्थिति को और अधिक मजबूत करना चाहता था, जिससे वह प्रायद्वीप में जापानी गतिविधियों पर नज़र रख सके। यह तथ्य तब और भी सही प्रतीत होने लगा जब उस स्थान की व्यवस्था और कार्य के लिए विघटित सैनिकों को भर्ती किया गया। रूस की यह नवीन दिशा पुराने नरमपंथी गुट को विस्थापित करके कट्टरपंथियों के नए गुट द्वारा प्रदान की गई थी। यह गुट जार के समर्थन के अधीन कार्य कर रहा था। यह प्रत्यक्ष रूप से रूसी विस्तार के लिए अपनाई गई अनन्य नीति थी और इसके तीन मूलभूत कारक थे। पहला, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि में मंचूरिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष रूप से रूसी उद्योगों को बढ़ावा देना। दूसरा, इस क्षेत्र में विदेशी उद्योगों को आने न देना। तीसरा, इस क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक हितों के समकक्ष अपनी रक्षा सामर्थ्य को बढ़ाना। इसके लिए जितना भी धन व्यय क्यों न हो, इन निर्देशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि रूस न केवल सुदूर पूर्व में अपने अधिकार क्षेत्रों और नियोजन को बनाए रखना चाहता था, परंतु इन क्षेत्रों को लेकर जापान से संभावित सैनिक मुकाबले के प्रति भी सजग था। इन उद्देश्यों और संभावनाओं को देखते हुए जार ने सुदूर पूर्व में वायसराय की नियुक्ति की। उसके अधीन केवल बाइकल ताल के पूर्व की ओर रूसी क्षेत्रों में राजनयिक, सैनिक और आर्थिक प्रशासन का सम्मिश्रण किया गया। नए वायसराय अलेक्सेयेव से यह अपेक्षा की गई कि वह अपने ओहदे को बनाए रखने के साथ साथ नए रूसी क्षेत्रों के प्रशासन को भी चलाए। इन गतिविधियों ने राजनीतिक और सैनिक दायरों में उत्तेजक संभ्रांति को पैदा किया। समाचारों और बुद्धिजीवियों द्वारा व्यक्त विचारों ने जनसाधारण को भी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान स्थिति के दोनों पहलुओं पर एक लंबे समय तक वाद विवाद के बाद जापान ने मनकान कोकान योजना, जिसमें मंचूरिया को कोरिया से बदलना था, को दोबारा स्वीकार किया और रूस को एक प्रति योजना पेश की, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, चीन और कोरिया की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता पर परस्पर सहमति और सभी देशों के लिए यहां व्यापार हेतु समान अवसर। दूसरा, कोरिया में जापानी अधिकारों और मंचूरिया में रूसी रेलवे अधिकारों की पुष्टि। विद्रोह जैसी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए दोनों देशों द्वारा अपने अपने अधिकृत प्रदेशों में सेना रखने की व्यवस्था। तीसरा, रूस द्वारा जापान के उस अधिकार को मान्यता देना जिसके अनुसार वह कोरिया में सुधारों तथा अच्छी सरकार की स्थापना हेतु सलाह और यहाँ तक कि सैनिक सहायता भी देगा। इसके प्रत्युत्तर में रूस ने अपनी शर्तें पेश की, जिसके अनुसार कोरिया के किसी भी हिस्से का प्रयोग सैनिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा और कोरियाई जलडमरु मार्ग सभी के लिए खोले जाएंगे। रूस दक्षिणी कोरिया में जापान की स्थिति को स्वीकार करेगा और उसके बदले में उत्तरी कोरिया के 39वें समानांतर का प्रदेश तटस्थ माना जाएगा, परंतु रूसी सेनाओं के इन प्रदेशों से वापस जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुए वार्तालाप के उपरांत कुछ संशोधन किए गए, जिसके अनुसार तय हुआ कि जापान, कोरिया, सीमा के दोनों ओर 50 किलोमीटर तक तटस्थ रेलवे पटरियां बिछाएगा। यह प्रदेश मंचूरिया तक थे और यहां सेना नहीं भेजी जानी थी। मंचूरिया में जापान ने रूस के व्यापारिक हितों को स्वीकार करते हुए यह भी आश्वासन लिया कि उसे संधि के अंतर्गत मिले अधिकारों को भी स्वीकार किया जाएगा। जापान द्वारा पेश की गई इन शर्तों ने रूस को सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए तुरंत होने वाले युद्ध से बचाया। जापान भी कोरिया के संदर्भ में रूस से ऐसा ही आश्वासन चाहता था, परंतु महारानी की बीमारी का बहाना बनाकर रूस चुप रहा। इस तरह संकटकालीन स्थिति में रूस की कूटनीति ने जापान के राजनीतिक और नौसैनिक दायरों में बेचैनी पैदा कर दी। रूस की अनेक गतिविधियों जैसे जापानियों से टिम्बर छीनने की घटनाएं, 5-6 चांदमारी के क्षेत्रों शूटिंग रेंज का निर्माण, युंगाम्पो में टिम्बर कंपनी के लिए वैधता प्राप्त करने की कोशिश ने स्पष्ट कर दिया कि उसके उद्देश्य क्या थे। इन घटनाओं ने जापान में उन दक्षिणपंथियों को और भी बेचैन कर दिया जो युद्ध को ही एकमात्र उपाय मानते थे। रूस ने एक बार फिर अपनी शर्तें पेश की और उनके जवाब में जापान ने दिसंबर 1903 में तीसरी बार अपनी शर्तें पेश की, परंतु इनमें कुछ भी नया नहीं था। रूस ने जापान के उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जिसके अंतर्गत यालू नदी के दोनों ओर तटस्थ क्षेत्र बनाने का सुझाव था, और उसने जापान और रूस के बीच एक प्रमुख मुद्दे के रूप में मंचूरिया का जिक्र भी नहीं किया। जापान ने भी मूलभूत नीति पर और विचार विमर्श करने का पूरा अवसर प्रदान नहीं किया। साथ ही साथ जनसाधारण तथा सेना और नौसेना का समर्थन पाकर उग्रपंथी युद्ध की तैयारी में जुट गए। नरमपंथी अपने सहयोग को खो चुके थे। जापानी राजनीतिज्ञ और गैनरों के सदस्य भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि रूस ने आश्वासन देने या दोबारा वार्तालाप शुरू करने की उत्सुकता नहीं दिखाई थी। इस प्रकार युद्ध के खिलाफ जो राजनीतिक विरोध था वह समाप्त हो गया और 28 दिसंबर 1903 को पारित अनेक अध्यादेशों में ऐसे सैनिक कदम उठाए गए जिनके परिणाम स्वरूप सेना और नौसेना दोनों ही संयुक्त सभाएं बुला सकते थे। शांति के समय ऐसा संभव नहीं था। इसी प्रकार के अधिकार संयुक्त जंगी बेड़े को भी दिए गए। प्रारंभिक सुझाव अभियान दल भेजने का था और इसके लिए धन जुटाया गया। कोरिया प्रायद्वीप में युद्ध की स्थिति में सियोल फुसान रेलवे का पूरा होना जरूरी था और इसके निर्माण को तुरंत पूरा किया गया। इस तरह की गतिविधियां और तैयारियां गोपनीय नहीं थी और इसलिए उन पर अटकलें लगाई जाने लगी तथा कोरिया और मंचूरिया को लेकर संभावित युद्ध की बातें होने लगी। पृष्ठ संख्या 100। जापान ने रूस को अंतिम चेतावनी दी और जवाब न मिलने पर उत्पन्न मुद्दे को सुलझाने के लिए सेना का प्रयोग करने का फैसला किया। इस आधार पर 10 फरवरी 1904 को शाही घोषणा में युद्ध का ऐलान किया गया। रूस ने जापान द्वारा राजनयिक संबंधों को तोड़े जाने का विरोध किया था, परंतु जापान को यह विश्वास हो गया था कि रूस यह स्थगित चाले केवल सुदूर पूर्व में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए खेल रहा था। रूस ने जवाबदेही में 3 सप्ताह का समय लगाया था और उसे असहनीय माना गया, जिसकी यह जवाबी प्रतिक्रिया जरूरी थी। रूसी दरबार में अंतिम समय तक यह माना जा रहा था कि उस जैसे शक्तिशाली सैन्य देश पर जापान युद्ध घोषित करने की धृष्टता नहीं करेगा, परंतु जब यह देखा जाता है कि राजनयिक वार्तालाप टूटने के 15 घंटों के बाद आर्थर बंदरगाह पर हमला किया गया, तब यह भी कहा जा सकता है कि रूस इस समय का प्रयोग जापान से और सुविधाएं मांगने के लिए कर सकता था और युद्ध को टाल सकता था। अंतिम विश्लेषण में यह स्पष्ट होता है कि जापान द्वारा अंतिम चेतावनी और रूस द्वारा जवाबदेही में असफलता युद्ध की शुरुआत के लिए और व्यापक स्तर पर घटित जवाबदेही में असफलता युद्ध की शुरुआत के लिए और व्यापक स्तर पर घटित महाविपत्ति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इसी के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय माध्यम को बुलाने या प्रयोग में लाने की पेशकश भी नहीं दी गई, यद्यपि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने का सुझाव मित्र देशों ने अवश्य दिया। रूस ने साधारणतया इसे स्वीकार किया, किंतु जापान ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। दोनों पक्षों की अस्वीकार्य फॉर्मूले पर बहस हुई तथा फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका ने दूसरा सुझाव भी पेश किया, जो दोनों देशों के सम्मुख अलग अलग रखा गया। यह प्रयास इसलिए असफल रहे क्योंकि जापान ने इन्हें अस्वीकार किया और इन पर बहुत देर से विचार किया गया था। यह प्रयास इसलिए भी असफल हुए क्योंकि युद्ध को रोकने के लिए जिस विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की जरूरत थी, उसका प्रबंध करना असंभव था। शक्तिशाली देशों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। यूरोपीय शक्तियां किसी भी कीमत पर इस युद्ध से बचना चाहती थी। इस कारण उनके प्रयास अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ साथ स्वार्थ से भी प्रेरित थे। इसके अलावा जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों को युद्ध रोकने के प्रयास करने की अपेक्षा एक ओर हटकर रहना अधिक बेहतर लगा।